Toronto.
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 647-769-0241।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਕੈਸੀ ਕੈਂਪਬੈਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 50,000 ਵਾਅਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ brampton.ca/savedbythebeat।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक ल्यू थ्रू आउट ओंटारियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यू 519-622-0660 quicktruckloop.com।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਓਨਟੇਰੀਓ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਕਰ ਸਕੋ। ontario.ca/builds ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ। ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਓਨਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियाँ और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773।
10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਈ ਨੂੰ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਪਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ।
ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਸੌਫਟ ਆਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਹੈ। ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਫ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰੌਟ ਯੂ ਬਾਏ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਫ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनी ग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC एम्बिशंस मेड रियल।
ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜੱਚਦਾ।
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ 9 ਵਿਆਜ।
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 9058747171।
ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਕਲਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਜਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ brampton.ca/culturedays ਤੇ ਜਾਓ।
770 AM ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਪ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਡੋਟ ਕਾਮ ਲੋਕਲ ਨੰਬਰ 6478724900
चांदनी
बैंक्वेट हॉल
इंटेलिजेंट चॉइस लोकेशंस साउंड सिस्टम इनोवेशंस चांदनी बैंक्वेट हॉल
30 इयर्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Indoor and outdoor golf course facilities. Chandni Banquet Hall. For appointment, call today at 905-458-8888. 905-458-8888 or visit chandnivictoria.ca. Chandni.
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਾਂਜੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ ਸਟੋਵ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ 3 ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਸੈਮਸੰਗ ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਸ਼ਾਰਪ ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਸਿਸ 801 Bowie Drive West Brampton ya call karo 905-450-2828 905-450-2828
Radio Sangam Music, news and information Messages and chit-chat
ویلکم بیک تمام سامعین جو ہمیں 770 ایم ڈائل پر سن رہے ہیں پروگرام ساز و آواز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر احمد اور اب گرما گرم خبریں لے کر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو گئی ہیں جڑی نہیں ہیں ابھی تھوڑی دیر میں جڑیں گے ابھی تھوڑا سا اسنیپ چیٹ میں بزی ہیں چار لوگوں کو بھی دیکھیں چار ہوں یا تین ہوں فین ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے اسٹیٹس اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے نئی تصویر ڈالنی پڑتی ہے اور آج جمعہ ہے آج ماشاء اللہ تھوڑا سا ایسٹرن ویسٹرن اسٹائل میں جو ہے تو ظاہر تصویریں کھینچ کے بھی تو لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ بھائی آج جمعہ ہے تو اپنے فین کو کچھ تصویریں کھینچ رہی ہیں تو جب تک میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب آپ ہمیں سن رہے ہیں 770 ایم ڈائل پر ریڈیو پر اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ eawaz.com یہاں بھی آپ ریڈیو سن سکتے ہیں ٹیلی ویژن دیکھ سکتے ہیں تمام یہ ایڈورٹائزرز کے نمبر آپ کو وہاں مل جائیں گے اور آپ ہماری ڈیٹیل نیوز بھی وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل ای آواز ٹی وی این ریڈیو کے نام سے اس کو لائک کیجیے سبسکرائب کیجیے اور اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آتا ہے تو اس کو اپنے دوست یاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ اس میں کیا امپروومنٹ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا آئی پی ٹی وی پر ای آواز ٹی وی تمام ای آئی پی ٹی وی باکسز پر آپ کو ہمارا چینل ای آواز ٹی وی الیکٹرانک آواز ای آواز ٹی وی کے نام سے اس کو آپ سرچ کر لیں پاکستانی اردو کیٹیگریز میں ایک بار آپ کو مل جائے تو اس کو آپ ریموٹ میں یلو رنگ کا بٹن ہوتا ہے جو فیورٹ میں ایڈ کر دیتا ہے اس کو دبائیں گے فیورٹ میں ایڈ ہو جائے گا پھر آپ کو دوبارہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا تو یہ ہو گیا سلسلہ آپ کے ساتھ اور ہمارا آپ کا تعلق آج 7:30 بجے تک رہے گا جمعے کا ایک خوبصورت دن اب تو شام ہو گئی ہے اب تو رات آنے والی ہے بلکہ شام ہو رہی ہے اور یہ ویدر انجوائے کیجیے اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے ساتھ اب اپنی سیلفی سٹک کے ساتھ شازیہ ملک صاحبہ جڑ چکی ہیں آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسی ہیں
السلام
جو مبارک آپ کو
اچھا تمہاری اس بات پہ نا مجھے ایک بات آتی ہے کہ بچی بیچاری گر گئی نا نادان تھی بیچاری نادان نہ دیا تھی ہاں گر گئی تو چوٹ آ گئی سر پہ تو ڈاکٹر کو فون کیا انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں گری ہوں مجھے جو ہے نا سر پہ چوٹ آ گئی ہے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تم نے کچھ لگایا کہتی ہے ہاں انسٹا پہ لگایا نا اسٹیٹس
او تو آپ بھی وہی کر رہی تھی
نہیں آپ کے کہنے کے اوپر مجھے یہ بات یاد آئی ہے
نہیں مجھ پر نہ ڈالیں یہ کر رہی تھی
پیکٹ لیا تم نے
اور فرائیڈے تو آپ کو پتا ہے نا فیل لائک
شلکن
ہاں فرائیڈے کوئی ٹینشن نہیں چاہیے مجھے
اچھا اچھا
کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں اپنی بیوی کی بھی ٹینشن میں نہیں لیتا فرائیڈے
اچھا 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 نہیں بیوی کی تو تمہیں لینی بھی نہیں چاہیے اگر تم نے لی تو بس پھر تم باہر سو گے مچھروں اور مکھیوں کے ساتھ اور مکڑوں کے ساتھ مکڑے
35 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई मच्छर आएगा वो मर जाता है, मशीन मिलती है हाँ, वो अगर आप लटका दें किसी खास साइट के ऊपर तो आपके आसपास का एरिया में मच्छर नहीं आएंगे, वो मैंने अपना बंदोबस्त कर लिया।
तो अगर कोई एनाकोंडा आ गया या कुछ ऐसी कोई,
अरे हमें देख के भाग जाएगा हाँ, वो हमें काट के क्या करेगा, वो बोलेगा यार इस मजदूर इस मतलब कहते ना कि बेचारा एक तो कराची से
हाँ,
फिर शादीशुदा जैसे आप कहती है हाँ, कराची से शादीशुदा
हाँ,
और फिर
बहुत ही मस्कीन और
मासूम होते
हैं
हाँ, वो कहते हैं नहीं यार मैं इसका क्या खून चूसूंगा,
ऑलरेडी मच्छर मक्खियों ने
10 साल से कनाडा में
चूस लिया है, ऊपर से कनाडा ने चूस लिया, ऊपर से कुछ बीवी ने चूस लिया, छोड़ो इसको
है ना कंडा मंडा ये सब, कौन सा कौंडा कहाँ का कौंडा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
कोई नहीं पड़ता,
इससे मैं डरता भी नहीं।
अच्छा अच्छा हाँ, वो तुमने देखा है वो स्टोरी पढ़ा है तुमने, वो जो थाईलैंड में एक औरत अपने किचन में काम कर रही थी तो उसको लगा थोड़ी देर में उसकी टांगों के पास ना कुछ उसको ऐसे कर रहा है घूम रहा है, तो नीचे देखा तो जी 6 फीट या 6 फीट का कोई वो पाइथन उसको ऐसे लपट रहा था,
तो हड्डियां सेकंड्स में तोड़ देता है
जी जी, तो पता नहीं कैसे वो कितनी देर लड़ती रही और चीखे मारती रही उसने एकदम, क्योंकि उसका मुंह पकड़ लिया वरना तो गई थी, तो फिर बाहर से कोई आदमी गुजर रहा था कोई नेबर उसका हाँ, वो अंदर आया तो उसने वो देखा इतना खौफनाक मंजर हाँ, फिर उन्होंने पुलिस बुलाया, फिर उसके सिर के ऊपर डंडे मारे, और सोचो जरा इतनी ह्यूज चीज वो इनसे निकल के भाग भी गया, गायब भी हो गया,
गायब हो गया
हाँ, इसको पकड़ ही नहीं,
शुक्र अदा करेगी ये बच गई खातून,
बच गई
वरना उसने सेकंड्स में आपकी हड्डियां वड्डियां सब,
और ये जो ये एग्जॉटिक इस तरह के एनिमल्स कर रहे थे ना, भी कुछ दिन पहले भी कोई ऑस्ट्रेलियन या कोई थे रो रहे थे, उनका इंटरव्यू लिया जा रहा था, उन्होंने जी पाइथन पाला हुआ था और घर में छोटा सा एक बच्चा था। अच्छा जी, मियां साहब अपने काम पे मसरूफ है, वो जो वर्क फ्रॉम होम होता है, बेगम साहबा जो है वो बाहर सौदा लेने चली गई, वापस आई तो देखा कि जी बच्चा गायब है, ढूंढ रहे देखा तो जी उसके पेट में है जी बच्चा पाइथन के,
माय गॉड।
तो भाई तुम लोग इस तरह की चीजें क्यों ऐसे तुम लोग घरों में रखते हो ना, और वो भी छोटे के बच्चे
हाँ,
के
ये तो
कहते हैं वो हमारा बच्चा तो उसके साथ खेलता रहता था, अरे अगर एक दिन खेल गया और सांप ने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब है सेकंड डे भी वो सांप ऐसे ही बिहेव करेगा, सांप तो सांप है ना भाई,
बिल्कुल जनाब ये ऐसा हाँ, कभी नहीं करना चाहिए।
एग्जैक्टली
अक्सर पाकिस्तान में आपने देखा वीडियोस आ रही थी, वो शेर पाला हुआ लोगों ने लाहौर में अक्सर में,
लेकिन शेर तो आप सधा सकते हैं ना, उसको आप टेम कर सकते हैं, झरकस में भी आप हाँ, टेम करते हैं ना,
फिर भी
सांप को नहीं आप टेम कर सकते, सांप टेम नहीं होता ना,
वो अपना काम कर
रहे हैं, वो अपना काम करके जाएगा, ये बात है, ये बाकी के जो जानवर है हाथी है शेर है इसको आप टेम कर, सांप को नहीं कर सकते, हाँ,
भालू
भालू को कर सकते हैं आप, इनको टेम कर,
लेकिन अगेन वाइल्ड जानवर है,
वाइल्ड है लेकिन सांप
उसका संतुलन बिगड़ गया,
सांप तो सांप है ना,
वो बोलेगा भाई नहीं, अगर शेर का भी संतुलन बिगड़ गया उसने कोई खबर आगे पीछे को सुन ली हो पाकिस्तान की तो अब वो तो वाइल्ड हो जाएगा, वो तो
बिल्कुल कहेगा मेरे मुल्क के खिलाफ क्यों बोला है जी एक बारी फिर शेर,
अब मसले के आपके जो वो सियासतदान है जो हुक्मरान है बल्कि कहते वो कभी एक्स बंद करते हैं कभी ये बंद करते हैं, वो अगर कोई वाइल्ड एनिमल का दिमाग घूम गया तो वो क्या क्या बंद करेगा, नो नो नो
तो बहुत ही बंद कर देनी है
आपकी
जिंदगी, बंद करेगा वो, सही बंद करेगा
वो, सही बोलती बंद करेगा,
सही करेगा,
मुझे लगता है कि थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। चले जनाब खबरें सुना दें क्योंकि लोगों का हीमोग्लोबिन जो है ना
नीचे आ गया,
बहुत नीचे आया हुआ,
चलो
और लोग पता है इस वक्त लोगों का बस एक, अगर मैंने अगला कुछ कहा ना तो डायल कर देंगे,
अच्छा अच्छा
कि भजन आप ऐसा करें वो हाँ। हमारी सांस नहीं आ रही है हाँ। तो खबरें सुनवा दें,
आमिर हमें पता है तुम प्यारे लग रहे हो, मुझे मौका दे दो आप बात करने का प्लीज, मौका दे, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल, तो यहां पे जाएं जी, जबरदस्त किस्म की फैसिलिटी आत हैं जी जनाब इनके पास, इंडोर एंड आउटडोर गोल्फ कोर्सेज हैं, बड़े जबरदस्त खाने हैं और आपको बड़ा जबरदस्त एम्बियंस भी मिलेगा क्योंकि अंदर जो हॉल्स हैं वो उनका बड़ा खूबसूरत डेकोरेशन और बड़ा आइडली लोकेटेड है, इनको कॉल करें 905-458-8888 एंड जनाब डेंटिस्ट्री ऑन मिसेज सागा, डॉक्टर नाजिया रहमान जबरदस्त किस्म की डॉक्टर हैं ये भी और आपको जबरदस्त डेंटल सुविधाएं देते हैं, तो आप इनके पास जाएं, इनका नंबर है 905-872-1100 एंड जी राजा ते बादशाह, अगर आप इनके यार दोस्त बन जाएंगे तो ये पैसे आपके भी उतने ही बचाएंगे जितने ये आमिर के इन्होंने बचाए हैं 1775 यानी के, ठीक है जी। राजा बादशाह से मिले, ऑल स्टेट में होते हैं, वो कहते हैं अगर आपके पास दो गाड़ियां और एक घर है तो आप मेरे पास आओ, मैं आपके ढेर सारे पैसे बचाऊंगा, इनका नंबर है 6472903773, ठीक है जी। अच्छा जनाब टूडो साहब जो है ना वो तो मुझे लग रहा है जी माफिया मांगने के लिए इस दुनिया के अंदर आए हुए हैं, ٹروڈو صاحب اور جو پی ایف پالی ایف صاحب جو ہیں ان کے بیچ میں کوشچن جو پیریڈ ہے اس کے بیچ میں کافی لڑائی جھگڑا ہوا اور اس کے اندر جو ہے ظاہر ہے کہ پالی ایف صاحب نے ان کو کہا کہ بھئی آپ کتنے لالچی ہو آپ جو ہے وہ اپنی پاور کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہو تو یہ ہم جو ہے یہ کلائمیٹ چینج کا یہ جو آپ کا جو ٹیکس ہے یہ جو یہ اس کو ہم ختم کریں گے اور ختم کرنا چاہیے کیونکہ لوگوں میں بہت برڈن ہے. ٹروڈو صاحب نے ان کا چیلنج لیتے ہوئے کہا انہوں نے کہا جی کہ اگر کلائمیٹ چینج الیکشن تم کرنا چاہتے ہو تو پھر دین وی ہیو دا رائٹ ٹائم تو لیکن اس کے لیے جب ٹائم آئے گا اس وقت کرنا ابھی یہ وقت نہیں ہے ابھی ہمیں کینیڈینز کے لیے کام کرنے دو. پالیئر صاحب نے کہا جی کہ جو آپ کہتے ہو کہ جی ہم کو کاربن ٹیکس الیکشن اگر لانا ہے تو پھر لانا ہے تو پھر آ جانے دو اس کو پھر اس کا صحیح ٹائم کون سا کی بات کر رہے ہیں آپ. ٹروڈو صاحب نے اس کے بعد پھر کہا جی کہ لیڈر آف اپوزیشن جو ہیں ان کو اپنے اوپر کچھ اتنا کانفیڈینس نہیں ہے کہ اگر یعنی کہ دو چار دن آگے گئے تو شاید ان کو کوئی ووٹ دے گا اور لیکن ہمارا فوکس کینیڈینز کے اوپر رہے گا اور یہ جو ہے ان کا فوکس جو ہے صرف سلوگنز کے اوپر ہے. پھر جی پی اے پالی ایف صاحب نے انہوں نے کہا جی کہ تم ابھی نیو یارک گئے ہوئے تھے تو تم نے وہ جو کاؤنسل جنرل ٹام کلارک ہے اس کا تم نے وہ لگژریس ریزیڈینس $9 million کا دیکھا ہے جس میں لگژریس ایلیمنٹس ہیں لائک ہینڈ کرافٹڈ کاپر سوکنگ ٹب. اب جب انہوں نے یہ کہا تو ٹروڈو صاحب نے کہا کہ میں تو انٹرنیشنل لیڈرز کے ساتھ ملنے گیا تھا کلائمیٹ پہ بات کرنے گلوبل کرائسس کے اوپر بات کرنے یوکرین کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تو وہاں پہ کوئی ایک اکارڈنگ ٹو سورسز ایک ان نیمڈ ایم پی ہیں ان کا پریس نے نام نہیں دیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہاں آپ تو ان کے ساتھ انگیج ٹب کے اندر کر رہے تھے. اب یہ تو مطلب ہے بہت ہی ان کالڈ فور تھا. ٹروڈو صاحب نے کہا جی کہ ہاں یہ تم لوگ اس طرح کے کامنٹس دیتے ہو اس سے پہلے بھی تم نے میرا مذاق ایک جو کنزرویٹو پارٹی کا ایم پی تھا اس نے میرا اڑایا تھا اور اس نے کہا تھا جی کہ جو ایک کلرک ہے وہ تمہارے ساتھ ٹب کے اندر ہوتا ہے تو یہ دس از ناٹ ریلی ویری رائٹ. اور انہوں نے پھر ایکیوز کیا ٹوریز کو کہ بہت ہی ہوموفوبک قسم کے کامنٹس دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اگر آپ یہ ایسے بلی کرتے رہیں گے مجھے اور تو یہ جو آپ کے اندر کریپ ہے آئی ول ٹیک دس آؤٹ اینڈ دیٹس واٹ آئی ول ڈو. تو اس کے بعد پھر انہوں نے سوری بولا انہوں نے کہا کہ یہ بڑی کروڈ لینگویج تھی کریپ مجھ کو نہیں یوز کرنا چاہیے تھا کیونکہ ویسے بھی اسپیکر یا گریگ فرگسن جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کامنٹ جو ہے اس کو ود ڈرا کریں تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں یہ بہت ہی ان پارلیمنٹری ورڈ تھا مجھے نہیں یوز کرنا چاہیے تھا. تو اس کے اوپر پالیا صاحب نے پھر ٹروڈو صاحب کا مذاق اڑایا انہوں نے کہا دیکھو ہی از لوزنگ ہز گرپ اور بڑے اریٹک ہوتے جا رہے ہیں اور اتنے ڈیسپریٹ ہیں اپنی کرسی کو پکڑے رکھنے میں. تو یہ جناب بڑی گرما گرمی ہوئی. ایک نیا سروے ہوا ہے پوسٹ میڈیا اور لیجر پول ہوا ہے جس میں کہ پوچھا جا رہا ہے کہ جی ٹروڈو صاحب کی پاپولیرٹی کتنی ہے تو اس میں صرف جو ہارڈ کور لبرلز ہیں وہ ہی لگ رہا ہے کہ ٹروڈو صاحب کو ووٹس دیں گے اور باقی جو ہیں اتنے زیادہ خوش نہیں ہیں. یعنی کہ اگر انہوں نے کہا جی کہ اگر عورتیں جو ہیں ان سے پوچھا جائے تو 64% عورتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی ہم ٹروڈو صاحب کو ووٹس دیں گے کمپیئر ٹو 65% مین. رورل اینڈ اربن جو ہے جو ایریاز ہیں وہاں پہ 71% نے کہا یس 64% نے کہا نہیں. انڈر 35 جو تھے اور سینئر سٹیزن تھے انہوں نے 66% نے کہا یس 64% نے کہا نہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ چاہتے نہیں ہیں اب کہ ٹروڈو صاحب جو ہیں وہ اپنی کرسی پہ رہ جائیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہارڈ کور لبرلز نہیں ہیں. ہارڈ کور لبرلز جو ہیں ان سے جب انہوں نے پوچھا تو اس میں ٹروڈو صاحب کی جو اپروول ریٹنگ تھی وہ 83% تھی اور 15% جو تھے وہ ڈس اپروو ان کو کرتے تھے. اس کے علاوہ این ڈی پیئرز جو ہیں جو کہ ان کے ساتھ این ڈی پی کھڑی رہی ہے آپ کو پتا ہی ہے ان سے پوچھا گیا کہ آپ چاہتے ہیں ٹروڈو صاحب جو ہیں اب رہیں یا جائیں تو 57% این ڈی پیئرز نے کہا جی کہ ہم ڈس اپروو کرتے ہیں ٹروڈو صاحب کا. 37% نے اپروو کیا. 24% جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نیکسٹ الیکشنز میں لبرلز کو ووٹ دیں گے اور جو لیکن ٹوریز کی سپورٹ ہے وہ اوپر جا رہی ہے. 44% لوگوں نے کہا کہ ہم ٹوریز کو سپورٹ کریں گے جبکہ 20% سے جو ہیں لیڈ کر رہے ہیں اب لبرلز کے ساتھ. اسی طرح جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ این ڈی پی اور بلاک کی بیکوا والوں سے کہا تو آپ کیا چاہتے ہیں تو این ڈی پی کے 61% لوگوں نے اور بلاک کی بیکوا کے 64% لوگوں نے کہا کہ ٹروڈو کو امیڈیٹلی جو ہے ریزائن کر دینا چاہیے. 81% کنزرویٹوز نے کہا کہ اس کو ٹروڈو صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. لبرل ووٹرز جو ہیں وہ ابھی بھی تھنکتے ہیں جو ہارڈ کور یعنی اگین ہارڈ کور جو لبرلز ہیں وہ ابھی بھی سوچتے ہیں کہ ٹروڈو صاحب جو ہیں بیسٹ بندے ہیں اپنی پارٹی کو نیکسٹ الیکشن میں لیڈ کرنے کے لیے. 33% جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. تو جناب یہ جو ہے ملا جلا سا ایک پول آیا ہے. فارن افیئرز منسٹر جو ہیں میلانی جولی صاحبہ, انہوں نے اب کہا ہے کہ میں لیبنیز پرائم منسٹر جو ہے ان کے ساتھ نیو یارک کے اندر ملوں گی سیٹرڈے کو, اور یہ جو چیزیں اسرائیل اور حزب اللہ کے بیچ میں بہت زیادہ ایسکلیٹ کر رہی ہیں, اور اسرائیل نے آج بھی جو اٹیکس کیے ہیں سدرن لیبنان میں, اس میں کافی لوگ مارے گئے ہیں. کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ ابھی تک مارے گئے ہیں اس میں 2 کینیڈینز تھے اور 3 کینیڈینز زخمی بھی ہوئے ہیں اسرائیل کی اس ایئر اسٹرائک میں لیبنان میں. اور جو مارے گئے ہیں کینیڈینز وہ تھے ایک کپل, ہسبینڈ اینڈ وائف, اس کا نام تھا حسین اینڈ داد تباجا. ظاہر ہے کہ یہ لیبنیز تھے لیکن ناؤ دے ور کینیڈین نیشنلز. تو جولی صاحبہ نے ان کے ساتھ کنڈولنسز ان کو دیے ہیں. یہ کپل جو تھا 1990s میں موو کیا تھا اوٹوا میں اپنے 6 بچوں کے ساتھ, اور جولی جو ہیں وہ انہوں نے کہا جی کہ میں ایک دفعہ پھر سے کہتی ہوں, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ لیبنان جانا چاہ رہے ہیں تو مت جائیں, اور اگر وہاں سے جتنی جلدی نکلنا چاہتے ہیں وہاں سے نکلیں. ہم جو ہے اب پرائیورٹی بنا رہے ہیں کہ آپ کی سیفٹی جو ہے اس کو جو ہے وہ پرائیورٹی دی جائے, لیکن اگر آپ ابھی نکل سکتے ہیں نکل جائیں. این ڈی پی جو ہے اس نے ابھی کچھ دن پہلے بھی ان کو کہا تھا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ لیبنان سے اپنے لوگوں کو فوراً نکالو, اور جولی نے کہا جی کہ بیسٹ تھنگ ہے کہ کمرشل فلائٹ لے کے آپ آ جائیں, یہ سیفیسٹ وے ہے. اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ جس وقت پورٹ آف بیروٹ کے اندر جب ایکسپلوژنز ہوئے تھے 2020 میں تو اس وقت بھی بہت زیادہ مشکل ہو گئی تھی لوگوں کو نکالنے کے لیے. تو اب انہوں نے کہا جی کہ جتنی جلدی پھر سے ہو سکے ایک دفعہ کہا کہ آپ نکل جاؤ. ابھی وینسڈے کو یعنی کہ پرسوں جو ہے ٹوڈو صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ وائلنس جو ہے حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ میں چل رہی ہے, یہ ڈی ایسکلیٹ ہونی چاہیے اور ختم ہونی چاہیے. اکارڈنگ ٹو جولی کینیڈا نے اپنا جو ڈپلومیٹک پریزنس ہے بیروت میں اس کو اب کچھ ٹائم سے کافی زیادہ جو ہے وہ اس میں سٹاف زیادہ کر دیا ہے, کیونکہ 45,000 کینیڈینز جو ہیں وہ لیبنان میں ہیں, تو ان کے لیے جو ہے پریشان ہے کینیڈین گورنمنٹ, اور بار بار کہہ رہی ہے نکل جاؤ نکل جاؤ. پتہ نہیں کیوں لوگ آخری وقت تک بیٹھے رہتے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. اچھا جناب, آر سی ایم پی نے اور او پی پی نے کہا ہے کہ یہاں پہ بے تحاشا ملک کے اندر سکیمز چل رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ سکیمرز جو ہیں وہ آپ کو پہلے تو ای میلز بھیجتے ہیں اور پھر آپ کو کہتے ہیں کہ تھریٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہم کو پیسے دو ورنہ آپ کی جو کمپرومائز کچھ فوٹوز ویڈیوز اور پرسنل انفارمیشن ہے وہ ہم آپ کے فیملی اور فرینڈز کو بھیجیں گے. وہ کہتے ہیں جی وہ ان کے ساتھ بی فرینڈ کرتے ہیں, آر سی ایم پی نے آج میٹرو وینکوور میں کہا, اور پھر ان سے کچھ تصویریں ان کی مانگتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پیسے دو ورنہ یہ ہم سارا کچھ لیک کر دیں گے. تو آج جو ہے پھر ان سے جب پوچھا جائے گا کیا کرے تو وہ کہتے ہیں بٹ کوائن کے تھرو ہم کو پیسے بھیجو. تو آر سی ایم پی نے کہا ہے کہ بھئی آپ ساودھان رہو اور ہم کو فوراً اطلاع کرو. اسی طرح او بی بی جو ہے اس کا اور کینیڈا اینٹی فراڈ سینٹر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بے شمار کینڈیڈیٹس ریزیڈنٹس بتا رہے ہیں کہ وہ سکیم ہو رہے ہیں, اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے گھروں کی تصویریں آپ کی کچھ تھوڑی بہت آپ کا جو سوشل میڈیا سے آپ کا نیم نمبر آپ کا ایڈریس لے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کہ ہم جو کہ لینا بڑا ہی آسان ہے گوگل سے, اور اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ آپ جو ہے جس ویب سائٹ کو وزٹ کر رہے ہو وہ جو کچھ خراب ویب سائٹس کو آپ کر رہے ہیں ان کی تصویریں ہمارے پاس ہیں, اور آپ کے سارے جاننے والوں کو ہم بتا دیں گے کہ آپ کی ایکٹیویٹی آن لائن کیا ہے ورنہ ہم کو کرپٹو کرنسی سے پیسے بھیجو. تو او پی پی نے بھی کہا ہے کہ بھئی ساودھان رہو اور اس طرح کے اگر میسجز آتے ہیں تو فوراً پولیس کو دسو, ہے جی, تو اس طرح کی کسی چیز میں نہ آئے. نتن یاہو صاحب جو ہیں انہوں نے آج فرائیڈے کو, جیسے ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ وہ فرائیڈے کو یو این جی اے کے اوپر خطاب کریں گے, تو آج وہ کر رہے تھے اور انہوں نے بڑی حیرت انگیز بات کی. انہوں نے کہا جی اسرائیل تو پیس چاہتا ہے لیکن ہم کو اینمی کے خلاف اپنی لائف بچانے کے لیے جو ہے وہ فائٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ جو اینمی ہے وہ ہم کو ختم کرنا چاہتا ہے. واہ جی واہ بھائی جان, ختم تو تسی کر رہے ہو جنہ دا ملک ہے, تو کہہ رہے ہو کہ تو انہیں آپ کو کوئی ختم کر رہا ہے. بہرحال جی انہوں نے کہا جی کہ حماس جو ہے وہ اس کو جانا پڑے گا, اور اگر کوئی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جو تباہی غزہ میں آئی ہے اس کو ہم ریکنسٹرکٹ کریں تو ہم بالکل نہیں کریں گے, ہم آخری وقت تک لڑتے رہیں گے, اور جو کبھی کوئی اٹیک کرے گا اسرائیل پہ اس کا ہم منہ توڑ جواب دیں گے. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ اینمی جو ہے وہ ہمیں ڈسٹروائے کرنے کے لیے ہے اور ہماری سولائزیشن کو ختم کرنا چاہتا ہے, تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اور ایران کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں, یعنی کہ یہ اب غزہ سے بڑھ کے اب یہ لیبنان کے کانٹیکسٹ میں بول رہے تھے کہ لیبنان کو بھی ایران کو بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اسرائیل کا آرم جو ہے وہ بڑے لمبے ہیں اور ایسا مڈل ایسٹ کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں پہ ہمارے جو ہے وہ ہاتھ نہیں پہنچ سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم چھوٹی چھوٹی بکریاں ہیں جن کو پکڑ کے آپ مار دو گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے سولجرز کو جنہوں نے بڑی انکریڈیبل کریج دکھائی ہے اینمی کے خلاف کام کرنے کے لیے. اور یہ جس وقت انہوں نے بات کی تو بہت سارے جو ڈیلیگیٹس تھے یو این جی اے میں وہاں پہ और इरेनियंस जो थे खास तौर पे वो असेंबली से उन्होंने वॉकआउट किया और उन्होंने कहा जी कि हम असेंबली के अंदर भी और बाहर भी यही मैसेज देना चाहते हैं कि इसराइल जीत रहा है और हमें सारा राइट है हम हर थ्रेट को रिमूव करें, अपने सिटीजन की सेफ्टी बनाए रखें और हिजबुल्ला जो है उसके भी हम कभी भी ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होने देंगे, उनको भी हम खत्म करेंगे और अपने लोगों को नॉर्थ में लेकर आएंगे। और फिर उन्होंने मिसाल दी, उन्होंने कहा जी इमेजिन करें कि एल पासो जो है वो वापस उसके टेररिस्ट आ जाते हैं और सेंट डियागो के अंदर वो आ जाते हैं और ये जो सिटीज हैं इनको ये घोस्ट टाउन्स बना देते हैं, तो यूएस गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, जाहिर है कि वो इनको मारेगी। हम भी एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम मैं जो है मेरे मुल्क में इस वक्त हालात बहुत खराब थे, फाइटिंग चल रही थी और मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन बहुत सारा झूठ इसराइल के बारे में फैलाया जा रहा है तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यहां पे आऊं और रिकॉर्ड्स को स्ट्रेट करूं। तो बड़ी लंबी चौड़ी जो है जी नतन्याहू साहब ने यहां पे आज स्पीच की है यूएनजीए में। एलबीसी जो है लेबनीज ब्रॉडकास्टिंग जो है उसने आज बताया है कि बहुत सारे लोग कतर, इजिप्ट, यूएस, फ्रांस अब कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रपोजल दिया जाए इसराइल और हिजबुल्ला को और जो है ये एक ट्रूस लाया जाए यहां पे। एक कुछ अरब डिप्लोमैट्स हैं, उन्होंने इनसे बात की है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि टर्किश इंटेलिजेंस के और इरेनियन इंटेलिजेंस के और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो लोग हैं वो भी बातचीत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि ईरान जो है बड़ा सीरियस है कि ये वॉर को रोका जाए और उसको आगे ना बढ़ाया जाए। इसी तरह तुर्की जो है वो भी नहीं चाहता है। इसके साथ साथ जाहिर है कि कतर के अमीर और इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है एलसीसी और बाइडन साहब जो हैं वो भी नहीं चाहते हैं। ये एक प्रपोजल जो है वेंसडे को यानी कि परसों फ्रांस ने भी 9 अदर लोगों के साथ, जो हमने आपको ये सारी खबर सुनाई थी कि 9 अदर नेशंस जो हैं उनके साथ इन्होंने भी एक प्रपोजल दिया था और इससे पहले उन्होंने प्रपोजल इसलिए दिया था कि इसराइल के जो आर्मी चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलवी उन्होंने कहा था कि हम एक पॉसिबल ग्राउंड इन्वेजन लेबनान के अंदर देख रहे हैं। उसके बाद फौरन फ्रांस ने कहा कि नहीं, लड़ाई को आगे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं रॉन डर्मर वो बड़े क्लोज हैं नतन्याहू साहब से, उनकी मुलाकातें हुई हैं यूएस स्पेशल एनवॉय एमोस हॉस्टीन और सीनियर व्हाइट हाउस ऑफिशियल जो है ब्रेट मैकगर्ग और उसके बाद फिर उन्होंने मुलाकातें की हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन से। स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर साहब उन्होंने कहा जी कि इन मीटिंग्स में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब ने उनको बड़ा बताया है कि 21 डे का सीज फायर होना चाहिए लेबनान और इसराइल के पास के बीच में और जो डिप्लोमेटिक सेटलमेंट है इन चीजों का होना चाहिए ताकि लोग अपने घरों में वापस आ सकें। डी एस्केलेशन की जरूरत है, एस्केलेशन से चीजें जो हैं वो और ज्यादा खराब होंगी। आज भी इसराइल ने जो अटैक किया है सदर्न लेबनान में उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ्स हुई हैं और ये अब आज चौथा कंसेक्यूटिव डे है जब ये कॉन्स्टेंटली बम्बार्डमेंट इसराइल जो है लेबनान के ऊपर कर रहा है। आज जो है बहुत सारे लोगों की डेथ्स हुई हैं, कल भी 29 लोगों की डेथ हुई थी। ये मेनली जो थे सीरियन थे जो कि यूनीन के एरिया में रहते हैं इन बेका वैली और लेबनान का जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो है ये जो सीरिया के साथ मिलता है, तो उसमें जनाब ये लड़ाई जो है जारी है जिसकी के जाहिर है कि बड़ी निंदा कर रही है दुनिया लेकिन इसराइल तो सुनने का नाम नहीं ले रहा। एसोसिएटेड प्रेस की जनाब ये एक न्यूज है और ये अब क्योंकि दिन पास आते जा रहे हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए तो कमला हैरिस और ट्रंप साहब जो हैं वो दोनों भी बड़े आजकल एक्टिव हुए हुए हैं और आपको पता ही है कि कमला हैरिस की जो कैंपेन है उसमें सबसे ज्यादा जो कंटेंशियस इशू है वो ये है बॉर्डर इशू जो है यूएस मैक्सिको बॉर्डर इशू और जो माइग्रेशन इलीगल बेतहाशा हो रही है और ट्रंप साहब जो है इस चीज को बेतहाशा हाईलाइट भी कर रहे हैं तो इसलिए ये कमला हैरिस साहबा जो हैं ये अब डगलस एरिजोना में पहुंची हुई थी क्योंकि यहां पे जो है सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स और असाइलम सीकर जो हैं लास्ट ईयर आए हैं। ट्रंप साहब जो हैं अपने फेलो वीपी के साथ जो हैं वो दूसरी जगहों पे जा रहे हैं और इमिग्रेशन के मुद्दे को ही उठाए हुए हैं और वो कह रहे हैं जी कि ये जो हैरिस और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने ये चीजों को बहुत ज्यादा खराब किया है और इन्होंने इस चीज को रोका नहीं है और उन्होंने अपनी अब कैंपेन स्पीच में इसीलिए हैरिस साहिबा जो है आजकल कह रही है कि हम एक बायपार्टिजन पैकेज लेकर आएंगे जिसमें ओवरऑल करेंगे हम इमिग्रेशन सिस्टम को। 7 मिलियन इमिग्रेंट्स जो हैं वो अरेस्ट किए जा चुके हैं जो कि इलीगली यूएस मैक्सिको बॉर्डर से अमेरिका में एंटर हो रहे थे तो इसी चीज को आज हाईलाइट किया है ट्रंप साहब ने और उन्होंने कहा जी कि ये सारे का सारा कुछ जो है हैरिस और बाइडन के अंडर चल रहा है और उन्होंने कहा जी कि अगर हम होंगे तो हम इस सारी की सारी चीज को रोकेंगे। ये माइग्रेंट्स जो हैं ज्यादातर लैटिन अमेरिका करीबियन एशिया से इसमें आ रहे हैं और वोटर्स जो है उनका बड़ा कंसर्न है कि ये यूएस इकोनॉमी में बड़ा बुरा असर डालेंगे, क्राइम्स को इंक्रीज करेंगे और कल्चरल जो वैल्यूज हैं उसको खराब करेंगे। लेकिन फिर भी जो रॉयटर्स और इप्सोस का लास्ट मंथ जो पोल आया था उसमें 43% लोगों ने जो है वो इमिग्रेशन के मुद्दे पे जो है ट्रंप साहब का साथ दिया था और 33% ने हैरिस का और 24% ने कहा था जी कि हमें इस इशू के बारे में पता नहीं है। तो ये बड़ा इशू जो है ना ये इमिग्रेशन का ये अब यूएस इलेक्शंस में खराब होता जा रहा है, ज्यादा बढ़ता ही चला जा रहा है। आईसीसी के चीफ, और ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है जी, ये आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो चीफ हैं, चीफ प्रोसिक्यूटर हैं करीम खान साहब, उनकी मुलाकातें जो हैं यूएनजीए के साइडलाइंस पे बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस साहब उनके साथ हुई है और उन्होंने उनको अपडेट दिया है कि जो ये इन्वेस्टिगेशन एक बिठाई थी ऑन अलेज जेनोसाइट ऑफ रोहिंग्या इन बांग्लादेश उसके ऊपर, इसके ऊपर जो यूनुस साहब थे उन्होंने एक 3-पॉइंट एजेंडा दिया था जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि ये सिचुएशन को असेस करें, सॉल्यूशंस प्रपोज करें और एक ज्वाइंट रिस्पांस प्लान बनाएं ताकि ये रोहिंग्या का जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है इसको खत्म किया जा सके और इसमें इंटरनेशनल एफर्ट्स भी चाहिए हैं जिसमें कि जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी लाई जाए क्योंकि ये जीनोसाइडल एक्ट्स हुए हैं जो रखीन में किए गए हैं इधर 2017 में। तो इसकी आज उन्होंने करीम खान साहब ने बड़ी तारीफ की और उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल आपके ये तीन जो मामलात हैं उसको देख रहे हैं। करीम खान साहब ने बड़ा रिग्रेट किया कि म्यांमार जो है वो बिल्कुल इन इन्वेस्टिगेशंस में साथ नहीं दे रहा और हैम्पर बल्कि कर रहा है और उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा कि भाई हमारा साथ दें क्योंकि ये प्रोसिक्यूटेड जो ग्रुप है इसको उसका इंसाफ मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जो है मोहम्मद यूनुस साहब ने आज करीम खान से पूछा कि अंडर हसीना वाजिद बहुत सारा जो है क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुआ है तो आईसीसी में एक प्ली डालने का क्या प्रोसीजर है क्योंकि ये बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था बांग्लादेश के अंदर जुलाई अगस्त के महीने में जब अपराइजिंग आई थी, 700 लोगों की डेथ हुई थी और 20,000 से ज्यादा लोग जो थे वो इंजर हुए थे विच फाइनली आउटस्टेड शेख हसीनाज गवर्नमेंट। लेकिन आपके पास अगर हमको शिकायत डालनी है तो फिर उसका क्या प्रोसीजर है, वो आज इन्होंने इनसे पूछा। एंड जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ओपन माइक कैफे। ओपन माइक कैफे पे जाएं, अब वीकेंड भी आ गया है, यहां पे बड़ी जबरदस्त किस्म की आपको मटन की कढ़ाई मिलेगी, लाहौरी नाश्ता मिलेगा और कुलचे मिलेंगे और बड़ी जबरदस्त और चीजें हैं। तो ये दे आर लोकेटेड एट 1310 डेनर स्ट्रीट ईस्ट यूनिट 3 मिसिसागा में और अगर आपको अपना ऑर्डर डालना है जाने से पहले तो आप इनको कॉल कर लें एट 416-526-6800। और जनाब गवर्नमेंट के अगर आपको 12,000 से 60,000 के ग्रांट्स चाहिए, अगर आपके बच्चे 12 ईयर से कम है तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए शावेज खान को आप फोन करें ए कंसल्टेंट इंक पे, इनका नंबर है 6477690241। तो आप जनाब इनको कॉल करें और इस जो ये फंड्स हैं इनका आप फायदा उठा सकते हैं। अच्छा जनाब, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, ये यूएन की जो जनरल डिबेट हो रही थी 79th सेशन ऑफ यूएनजीए इन न्यूयॉर्क, उसमें बहुत सारे लीडरों से इनकी मुलाकातें जो हैं वो हुई हैं। इसमें उन्होंने फिर से कहा है कि अगर इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम उसका बिफिटिंग जवाब देंगे। उन्होंने कहा जी कि इंडिया कॉन्स्टेंटली सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उनको नकारता जा रहा है और प्लेबिसाइट नहीं करवा रहा है यहां पे कश्मीरियों को ताकि सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जा सके। ये कश्मीर का जो मसला है ये सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस जो हैं उनके साथ हल होना चाहिए। इसके साथ साथ फिर इनकी मुलाकातें जो कुवैत के क्राउन प्रिंस हैं शेख सबा अल खालिद अल हामिद अल मुबारक अल सबा उनसे हुई और दोनों कंट्रीज के बीच में जो ब्रदरली रिलेशंस हैं उनकी बातचीत हुई और ट्रेड को बढ़ाने की बात हुई। फिर इनकी मुलाकातें बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद यूनस से हुई और इनके साथ भी इन्होंने अपनी ट्रेड को और बाकी बायलैटरल कोऑपरेशन को डिफरेंट फील्ड्स में बढ़ाने की बात की। फिर इनकी मुलाकात हुई मालदीव्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद मीजू से और इन्होंने फिर वही चीजें डिस्कस की और क्लाइमेट और ग्लोबल चैलेंजेस। उसके बाद ये मिले जाके यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस से और उनको उन्होंने कहा जी कि जम्मू और कश्मीर का जो मसला है उसको हल कराने में आप अपना रोल प्ले करें। इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी मीटिंग अजय पाल सिंह बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ हुई और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि आप हमारा क्रिटिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको आप जो है वो हेल्प दे रहे हैं, ये हमें हेल्प करेगा पॉवर्टी को खत्म करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। फिर जनाब इनकी एक और मुलाकात इम्पॉर्टेंट हुई यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर से, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो यूके में रहती है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग देम और हमको ट्रेड और बढ़ाना चाहिए। फिर ये मिले इरानियन प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद पेजेशकियां के साथ, और आपको पता ही है कि इनके बीच में अभी ईरान और पाकिस्तान के बीच में काफी पाइपलाइन को लेकर और बाकी चीजों को लेकर आज कुछ खटपट चल रही है, तो उसके ऊपर भी इन्होंने कहा कि हमको टाइज को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और इन्वेस्टमेंट और ट्रेड हमको बढ़ाना चाहिए, इसके साथ साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। फिर शहबाज शरीफ साहब मिले जो इराकी प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद शिया अल सुडनी के साथ, और उन्होंने बड़ा कंडेम किया इसराइल की वॉर को अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस, और पाकिस्तान और इराक के काफी पिछले दिनों सालों में कुछ जो टाइज हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने काफी इराक की सिक्योरिटी फोर्सेज को हेल्प किया है टू फाइट अगेंस्ट दाइश। तो काफी जनाब हाई प्रोफाइल मीटिंग्स शहबाज शरीफ साहब की रही यहां पर यूएनजीए के ऊपर। पाकिस्तान की जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो जी अब पिछले दो महीनों से नीचे 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 आती जा रही है, और आने वाले दिनों में ये 8-9% पे आ जाएगी। इसका खुलासा जो है फाइनेंस डिवीजन ने किया है एक्सप्रेसिंग ऑप्टिमिज्म। उन्होंने कहा जी कि मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, मंथली इकोनॉमिक अपडेट एंड आउटलुक जो है वो देते हुए जो ये रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सीपीआई जो है वो गिरा है सिंगल डिजिट्स में इन अगस्त 2024 मार्किंग 34 मंथ लो, और इसमें वो कह रहे हैं आने वाले दिनों में और ज्यादा कमी आएगी इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन भी जो अगस्त के महीने में थी वो भी 9.6 पे थी कम्पेयर टू 27.4% इन सेम मंथ लास्ट ईयर। उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में रिकवरी के साइंस आते जा रहे हैं, और 1 से 2 महीनों में जो फिस्कल ईयर है 2025 उसमें काफी ज्यादा आपको चेंज नजर आएगी इकोनॉमी में, यानी हेल्दी होने जा रही है। उन्होंने कहा जी कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी नीचे आया है, और जो इकोनॉमी है उसने काफी रिजिलियंस शो की है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये रिजिलियंस ऐसे ही कंटिन्यू की जाएगी। तो ये जनाब आज अच्छी एक चीज है। अब ये जो आईएमएफ का बेल आउट अग्रीमेंट आया है इसके ऊपर जो केपी की गवर्नमेंट है उसने अपने बड़े रिजर्वेशन शो किए हैं। केपी के जो एडवाइजर हैं फॉर फाइनेंस मुजम्मिल असलम, उन्होंने बात करते हुए कहा है कि ये हम वैसे तो वेलकम करते हैं ये जो पैकेज का अप्रूवल पाकिस्तान को मिला है, लेकिन ये डिसीजन जो है ये कैबिनेट ने लेना है यहां पे, या केपी की कैबिनेट ने, और वो रिव्यू करेंगे ये सारे आईएमएफ का जो आपका बेल आउट पैकेज है। तो हम जानना चाहते हैं कि किन पॉइंट्स के ऊपर आपकी इनके साथ डील हुई है, क्योंकि हमको ये सारी रिपोर्ट केपी के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर को देनी है। आईएमएफ के जो पाकिस्तान के मिशन के चीफ हैं नेथन पोर्टर, उन्होंने भी कहा जी कि यस, चूंकि फ्रेंडली कंट्रीज ने काफी फाइनेंसेस जो थे वो अशोर किए थे इस्लामाबाद को, उसकी वजह से ये बेल आउट पैकेज इनको मिल सका है, और उसमें काफी इनके जो इकोनॉमी है उसमें स्ट्रेंथ आएगी। $12 बिलियन का जो है वो रोल ओवर जो है अब इनकी उसमें इकोनॉमी में रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मुताबिक इंटरेस्ट रेट जो है इस लोन के ऊपर बहुत ज्यादा कम है, less than 5% है, और उसके बाद हो सकता है कि चूंकि इकोनॉमी में थोड़ी जोर आई है तो जो आईएमएफ है वो इनको सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी इसी साल के एंड तक दे दे। तो जनाब ये बातें सामने आई हैं। पीटीआई जो है उसने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में जो ये गवर्नमेंट लेकर आई है न्यूली प्रोमल्गेटेड ऑर्डिनेंस 2024 जिसको अमेंड किया है, और दे हैव अमेंडेड सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 टू एज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2024 में। इसमें पीटीआई के जो चेयरमैन है गौहर अली खान, उन्होंने ये पिटीशन डाली है कोर्ट में अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने चैलेंज किया है। ये तीसरी ऐसी पिटीशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट में आई है। इससे पहले एडवोकेट एहतशामुल हक जो है फॉर्मर चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अफरासियाब खटक जो है उन्होंने भी इसको चैलेंज किया है। ये जो फाइल की गई है पिटीशन गौर साहब की, ये उनका जो लॉयर है एडवोकेट समीर खोसा उनकी तरफ से ये डाली गई है, और इसमें के अंदर नाम जो है यानी कि जवाब जो है वो माने गए हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान से, कैबिनेट थ्रू कैबिनेट सेक्रेटरी, और इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और प्रेसिडेंट जरदारी, और उनको कहा जी कि ये सारे इनके आप जवाब दें थ्रू जाहिर है कि देयर सेक्रेटरीज। उन्होंने कहा जी कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, ये कहा है कि ये सारे के सारे अमेंडमेंट को अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर इसको समझा जाए, क्योंकि ये वायलेट करते हैं आर्टिकल्स 4, 9, 10, 19A, 25, 89, 175, 2, 191 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉजेज। और उन्होंने कहा जी कि इस सिलसिले में जो कोई भी अमेंडमेंट्स आई हैं या जो कमेटीज भी बनाई गई हैं उनको भी कहा जाए कि ये बिल्कुल इनकी लॉफुल अथॉरिटी नहीं है कोई चेंजेस करने की और इनको जो है फौरन खारिज किया जाए। तो जनाब ये अब और कितनी देर लड़ाई चलेगी इनकी ये अब मालूम नहीं है, बहरहाल देखें जरा। पंजाब गवर्नमेंट जो है उसने सेक्शन 144 रावलपिंडी में लगा दिया है फॉर टू डेज और उसमें जो है उसके अंडर तमाम पब्लिक रैलीज जो है उसको बैन कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि सितंबर 23 को जो पीटीआई के चेयरमैन है गौर अली खान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पीटीआई रावलपिंडी के अंदर एक रैली करेगी सितंबर 28 को और हमने जो है एनओसी के लिए एक एप्लीकेशन डाली है और फिर उसके साथ साथ उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को भी कहा था हमको भी एक एनओसी दें। पीटीआई के दूसरे लीडर उमर यूब खान जो हैं उन्होंने अपने एक वीडियो डाला है एक्स पे और उन्होंने लोगों को कहा है कि भई आप रावलपिंडी के लियाकत बाग में आए सैटरडे को, लेकिन कॉन्ट्ररी टू दिस इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि मैंने मना किया है इनको कि बिल्कुल पिंडी के अंदर आपने पीटीआई का रैली नहीं करना है इसलिए कि गवर्नमेंट जो है वो इसकी इजाजत नहीं देगी जिस जगह पे हम यानी कि लियाकत बाग में जहां हम करना चाहते हैं और फिर से एक दफा सबर्ब्स में जगह दे देंगे तो वो हम नहीं चाहते हैं। तो मैं सिर्फ पार्टी को ये कहना चाहता हूं कि आप जो है आप प्रोटेस्ट करें, प्रोटेस्ट लॉन्च करें। पीटीआई के लॉयर्स जो हैं उन्होंने अब कहा है जी कि वो एक प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे आउटसाइड सुप्रीम कोर्ट और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है अताउल्लाह तारर साहब जो है उन्होंने भी आज एक्सप्लेनेशंस दी हैं कि इन्हीं चीजों की वजह से हम एक्स को बैन करते हैं क्योंकि ये तमाम मामला फिर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ जाते हैं, हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ नहीं है। भाईजान नहीं हो तो फिर इन चीजों को आप क्यों रोक रहे हो हैं? तो बहरहाल वो कहते हैं जी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। आज जनाब एक दफा फिर से जो है एक ब्लास्ट हुआ है सवाबी में, लेकिन इस दफा ब्लास्ट टेररिस्टों ने नहीं किया है, ये इनकी अपनी खुद की गलती से हुआ है और इसके अंदर जो है चार लोगों की डेथ्स हुई हैं और एक जो बंदा जिसको के बचा खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में लेके जा रहे थे तो उस पांचवें की भी वहां पर डेथ हो गई। इसमें हंड्रेड्स जो है डजन्स कह लें आप लोग जो है वो वूंडेड हुए हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन स्वाबी हारून रशीद ने आज रिपोर्टरों को बताया कि ये ब्लास्ट पुलिस स्टेशन के वेयर हाउस रूम में हुआ है जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। यहां पे एक ह्यूज क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल्स जो कि टेररिस्टों से कलेक्ट की गई थी वो रखी गई थी और ये शॉर्ट सर्किट वहां पे हुआ है जिसकी वजह से ये मल्टीपल डेटोनेशन हुए हैं और ये सारे ब्लास्ट यहां पे हुए हैं। ये जैसे ही इत्तला मिली तो यहां पे फायर फाइटर्स और रेस्क्यू टीम आ गई थी और ये जो है इंजर्ड को शिफ्ट कर रही थी बीकेएमसी में और जो केपी के चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब उन्होंने अब आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि आप इमीडिएटली एक रिपोर्ट तैयार करें और मेडिकल असिस्टेंस जो है वो अथॉरिटीज को कहा है कि लोगों को दें और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि बताएं कि ये असल में यहां पे क्या हुआ है। और जनाब जैसे हम आपको कह रहे हैं कि हिन्दुस्तान में भी चीजें काफी गर्मा गर्मी में चल रही हैं क्योंकि वहां पर भी आ रहे हैं इलेक्शंस और कश्मीर में तो आपको पता ही इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो शुरू ही हो गए हैं तो अब उसके ऊपर जो है बड़ी वहां पे भी कुछ गर्मी चल रही है। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह साहब ने आज फिर से राहुल गांधी के ऊपर काफी ताने कसे और उन्होंने कहा जी कि ये जो हैं बाबा जी इनको तो यही नहीं पता है कि एमएसपी का मतलब क्या है। ये तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी जिसने हरियाणा के अंदर 24 जो क्रॉप्स हैं उनको अंडर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो प्रोक्योर किया था और कांग्रेस जो है वो सिर्फ करप्शन रिजर्वेशन और फार्मर्स के इश्यूज को जो है गलत तरीके से करती है। तो एक एनजीओ है कोई बाहर की उसने राहुल बाबा को ये बोल दिया है कि तुम एमएसपी बोलते रहो वोट्स लेने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी को ये भी पता है कि खरीफ की क्रॉप क्या होती है और रबी की क्रॉप क्या होती है। तो इनके जो कांग्रेस रूल्ड जो स्टेट्स हैं वहां पे कभी इतनी ज्यादा क्रॉप्स को प्रोक्योर किया गया है, हमने किया है इधर हरियाणा के अंदर। और उन्होंने कहा जी कि कर्नाटका और तेलंगाना के अंदर भी हमने इनसे पूछो कि इन्होंने कितनी क्रॉप्स जो हैं वो खरीदी हैं, लेकिन अगर हम आएंगे तो हम करेंगे। उन्होंने कहा जी कि कांग्रेस रूल में पैडी जो है उसको प्रोक्योर किया जाता था 1300 रुपीज पर क्विंटल पे, हमने इसको लाके बढ़ाया 2300 रुपीज पर क्विंटल किया। इसी तरह जो अगर बीजेपी की गवर्नमेंट जो है हरियाणा के अंदर इलेक्ट होगी तो प्रोक्योरमेंट जो हम पैडी की करेंगे वो 3100 पर क्विंटल करेंगे रुपीज यानी कि इंडियन। और उन्होंने कहा जी कि हम जो भी कोई डिमांड्स करते हैं हम उसको पूरा करते हैं, जो कि हमारा एक डिमांड था यहां पे जो हमारे फौजियों का वन रैक वन पेंशन हमने उसको भी पूरा किया है, डेवलपमेंट की है हरियाणा के अंदर और भी बहुत कुछ किया है और करप्शन को कम्प्लीटली 10 साल पिछले में खत्म कर दिया है। जबकि कांग्रेस जो है उसकी जो पॉलिटिक्स है वो बेस करती है कमीशन कट और करप्शन के ऊपर, और इनके ये सारे काम जो हैं डीलर्स, दलाल्स और दामाद्स करते हैं। तो बीजेपी के अंदर ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है, ये अमित शाह साहब ने कहा है जी, हमने नहीं कहा, ये अमित शाह साहब कह रहे हैं। और हरियाणा के अंदर जनाब इलेक्शंस आने वाले हैं 5 अक्टूबर को, और रिजल्ट्स जो हैं वो अक्टूबर 8 को आएंगे। ये जो है बड़ी ही आज की फिर से खतरे में नाक न्यूज है, और ये द हिंदू के अंदर आज आई है। आपको पता ही है कि ये जो यूएनजीए के मीटिंग्स हो रहे थे इसके सिलसिले में मोदी जी जो हैं यूएसए में आए हैं, लेकिन लोगों को बड़ी हैरत हुई कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब जो हैं, जो कि बड़े क्लोज भी हैं वैसे भी मोदी जी के, वो क्यों नहीं आए। तो लोगों ने आज कहा कहीं ऐसा तो नहीं है ये यूएस इसलिए नहीं आया कि न्यूयॉर्क की जो कोर्ट है उन्होंने इनको समन्स भेजे हैं खालिस्तानी इशू और ये जो सिखों के मुद्दे के ऊपर जो है इनको जो है बुलाया गया था, एक लॉ सूट फाइल की थी सिक्स ऑफ जस्टिस के फाउंडर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने, जिसकी डिटेल्स हमने आपको पहले एक दफा बताई थी। और उन्होंने कहा था जी कि ये जो न्यू एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है अगेंस्ट ट्रांस नेशनल रिप्रेशन, जिसमें कि उसने मेंशन किया था इंडिया को, और उसने कहा था कि जो मीटिंग्स हुई थी यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऑफिशियल्स की और सिख एक्टिविस्ट की, जिसके ऊपर बड़े क्वेश्चंस रेज किए गए थे, तो उसमें उन्होंने पूछा जी कि ये क्या हो रहा है, और एक कहा था कि ये सिखों के खिलाफ जो है कॉन्स्टेंटली इंडियन गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, जैसे कि मुझे मारने की कोशिश की पन्नू साहब ने कहा, वैसे ही दूसरे सिखों को जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं उसके ऊपर उनको भी मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जब उन्होंने कोर्ट में पटीशन डाली तो उन्होंने समन्स भेजे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है इंडिया की, उसने कहा जी कि ये जो सूट इन्होंने डाला है ये बिल्कुल अनवारंटेड है, और ये डाला भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने है, तो इसलिए इसका कुछ मतलब बनता नहीं है। ये जो समन्स इशू किए गए हैं डोवाल साहब के, क्योंकि ये फॉर्मर रॉ के चीफ, ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं एंड फॉर्मर रॉ के जो चीफ हैं समंत गोयल, और सिक्योरिटी ऑफिशियल जो हैं विक्रम यादव और बिजनेसमैन निखिल गुप्ता के लिए, तो जिसको के इस वक्त यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट में ब्रुकलिन जेल में रखा हुआ है, तो वो कहते हैं जी इन सब लोगों को कोर्ट के सामने आके बात करनी चाहिए, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट जो है अब एक इन्वेस्टिगेशन बिठाए हुए है इन द अलेज्ड असैसिनेशन प्लॉट ऑफ पन्नू अकॉर्डिंग टू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है विक्रम मिश्री। तो उन्होंने कहा जी कि ये सारे मामला जो है इसलिए ऐसे चल रहे हैं, लेकिन इसका कुछ भी लेना देना नहीं है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से। उन्होंने कहा जी कि वो इसलिए यहां पे ठहरे हुए हैं मुल्क में क्योंकि मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, और जम्मू और कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, और इस तरह के उन्होंने कहा जी समन्स तो यूएस कोर्ट्स जो है वो देती ही रहती हैं। इससे पहले भी पन्नू साहब ने जो पिटीशन डाली थी वो डाली थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, फॉर्मर मिनिस्टर कमलनाथ के लिए, जो 1984 के सिख राइट्स हुए थे, और मोदी जी के खिलाफ भी उसने डाला था फॉर ये जो 2002 का गुजरात वायलेंस था उसके लिए, तो ये सारी चीजों के लिए। लेकिन जो स्टेट डिपार्टमेंट था अमेरिका का, उसने इन्वोक किया था इम्यूनिटी, उन्होंने कहा था जी कि ये इंडिया के टॉप डिग्निटरीज हैं और इनके खिलाफ हम जो है इनको इम्यूनिटी है, तो इनके खिलाफ हम मुकदमे नहीं चला सकते यहां पे, तो पाई जाने ये गाले। ठीक है जी। अच्छा जी, सैफ अली खान साहब फाइनली ओनरशिप उनको मिल गई है जी पटौदी पैलेस की। तो बहुत दिनों से ये खबरें आ रही थी कि शायद ये अपने पटौदी पैलेस जो है उसको म्यूजियम में टर्न करेंगे, तो आज उन्होंने आज साफ साफ कह दिया है नो टाटा बाय बाय, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा जी कि ये घर जो था डिफरेंट लोगों को बिलोंग करता था, इसमें मेरे दादाजी थे, मेरे वालिद साहब, मेरे दादाजी नवाब थे, मेरे वालिद साहब जब पैदा हुए तो वो भी नवाब थे, हाँ वो चीजों को चेंज करना चाहते थे, वो घर का कुछ हिस्सा जो है उसको होटल में टर्न करना चाहते थे, लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर थी उसने मुझे कहा खबरदार ऐसा मत करना, इस घर के अंदर बहुत सारी हिस्ट्री है और मैं बड़ा उसके लिए प्राउड फील करता हूं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे फादर सारे के सारे इसी पैलेस का जो अहाता है उसके अंदर वो लोग बैरिड हैं, इसके अंदर ओल्ड हाउसेज हैं जिनको के दरबार हॉल्स कहा जाता है, मुझे लगता है कि ये बड़ा आउटडेटेड है, इनको लॉन्ग रूम्स कहना चाहिए, जैसे कि लॉर्ड्स के अंदर हॉल्स को कहा जाता है लॉन्ग रूम्स। और उन्होंने कहा जी कि ये जो घर था ये जो 7th नवाब ऑफ पटौदी थे उन्होंने मेरे वालिद साहब यानी कि मेरे दादाजी और मेरे वालिद साहब ने मिलके बनाया था, और यहां पे वो क्रिकेट के बड़े शौकीन थे मेरे वालिद साहब, तो मैंने उनकी क्रिकेट की कुछ चीजें और बैट्स और टोपी और बहुत सी इस तरह की चीजें रखी हैं, तो इस घर में उनकी स्पिरिट्स हैं, और ये मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं उनकी स्पिरिट्स को यहां पे जिंदा रखूं, तो मैं बिल्कुल कोई इसको म्यूजियम बनाने के नहीं हूं हक में। तो जनाब ये हैं सारी बातें हैं जी। ठीक हो गया आ जाइए। और जनाब आज जूनियर एनटीआर की फिल्म आ गई है दीवारा, जिसके के अंदर सैफ अली खान भी हैं और जानवी कपूर भी हैं, और दुनिया ये फिल्म देख के बिल्कुल पागल हो गई है। वो कह रहे हैं वाह वाह वाह, ये तो साउथ इंडिया से एक और ब्लॉकबस्टर आ गया है। लोग कह रहे हैं कि ये जबरदस्त एक्सप्लोजिव किस्म की मूवी है, टेरिफिक है, पल्स थिकनिंग एक्शन है, डांस है, कोरियोग्राफी है, और कैरिज्मा तो एनटीआर का गजब का है। और वो कह रहे हैं जी ये कोराटाला सिवा जो है, यानी कि जिसने मूवी बनाई है, वो तो उसको पता है कि ये फिल्म को कैसे ऊपर नीचे लेके जाना है और परफॉर्मेंसेस कैसे करवानी है और लोगों को एंटरटेन कैसे कराना है। ये एब्सोल्यूटली इट इज टॉप नॉच, इट इज 5 स्टार। ये जो फिल्म थी ये इंडियन 300 करोड़ के बजट के ऊपर बनाई गई थी, और एडवांस बुकिंग में ही इस फिल्म ने 150 करोड़ कमा लिए थे। और आज जो ये फिल्म लगी है तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ द डे 100 करोड़ और कमा लेगी। तो यानी कि 300 करोड़ की फिल्म है तो मतलब है 500-600 करोड़ तो कमा ही लेगी। जस्ट लाइक स्त्री टू का आपको पता है कि तकरीबन 600 करोड़ को वो टच कर रही है। तो ऐसे आज जनाब आज एक इंटरव्यू आया है सलमान खान की फॉर्मर गर्लफ्रेंड जो है सोमी अली, उन्होंने आज बहुत लैश किया जनाब सोनू निगम साहब को। उन्होंने कहा सोनू निगम ऊपर से तो बड़ा संत साधु बना हुआ है और कहता है मेरे साथ बड़े जुल्म हुए, लोगों ने मुझे बड़ा अब्यूज किया, लेकिन असल में उसने मुझे यूज किया टू टेक रिवेंज फ्रॉम सलमान खान। एक वीडियो उन्होंने अपने इंस्टा पे डाला है और उन्होंने बड़ा ब्लास्ट किया इसको। उन्होंने कहा जी कि मैं कुछ अर्सा पहले कुछ इंटरव्यूज करती होती थी, एक मैंने टॉक शो इसी तरह किया, उसमें इंटरव्यूज के लिए बहुत से लोगों को बुलाया, तो इनको भी बुलाया। इन्होंने ऐसी मीठी मीठी बातें की कि मैं तो हैरान रह गई और मैं तो इनकी दीवानी हो गई। लेकिन उस इंटरव्यू के बाद ये इनको जब मैंने मैसेज भेजा कि सर आपसे और भी कुछ मैं सीखना चाहती हूं बात करें, तो उन्होंने कभी पलट के मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। तो मुझे समझ में आ गई कि ये जो उस स्पेसिफिक इंटरव्यू के लिए आए हैं ये किसी से बदला लेना चाहते थे और किसी को कुछ सुनाना चाहते थे। और मैं तो बहुत ही छोटी थी, मैं तो मुंबई जब आई थी तो मैं तो 16 साल की थी और मुझे तो पता नहीं था कि ये दुनिया कैसे काम करती है। लेकिन इस तरह के लोग जो होते हैं, यानी कि सोनू निगम की तरह के, वो सोशियोपैथ्स होते हैं। मैं अभी भी उसके गाने बहुत पसंद करती हूं, बट ही कैन स्टूप टू द सीवेज लेवल आई डिडंट नो। तो जनाब बड़े एलिगेशन लगे हैं जी, गंदी बच्ची गंदी बच्ची ऐसी करती है, है? पाकिस्तान की जो विमेन कैप्टन है, विमेन टीम की जो कैप्टन है फातिमा सना, उन्होंने कहा जी कि अब हम फियरलेस अप्रोच रखेंगे टू विमेन्स T20 वर्ल्ड कप दिस ईयर। उन्होंने कहा जी कि हाँ बिल्कुल, हम पावर प्ले में स्ट्रगल करते रहे हैं और हमारे अर्ली विकेट्स गिरते रहे हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर कलैप्स करता रहा है और हमने बड़े कम टोटल्स बनाए हैं। 120 को भी कभी चेज करना हमारे लिए मुश्किल होता था, लेकिन हमने दूसरी टीमों से सीखा कि इट इज वेरी वेरी क्रूशियल कि आप पावर प्ले के अंदर पॉजिटिव इंटेंट से जाएं और कंपेटिटिव स्कोर्स बनाएं। और हमने देखा बड़ी टीमें फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर बड़ा सारा स्कोर इकट्ठा कर लेती हैं और फिर उसको चेज करना मुश्किल हो जाता है। तो हम भी अब अटैकिंग इंटेंट रखेंगे, बहुत सारी यंगस्टर्स जो हैं वो हमारी टीम में आ गई हैं, वो बड़ी प्रॉमिसिंग हैं। और वो कहती हैं कि मैंने जब अपना डेब्यू किया था 2019 में, उससे के बाद से अब गेम बहुत ज्यादा इवॉल्व कर गई है और जो अब बैटर्स हैं वो बड़े बड़े स्कोर करते हैं, तो हम अब चाहते हैं कि हम भी कंपेटिटिव रहें और कंपेटिटिव स्कोर्स करें। तो अच्छी बात है ये। पाकिस्तान के वर्ल्ड रिनाउन एम्पायर अलीम खान, अलीम डार 56, ही हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट। और उन्होंने कहा जी कि ये जो सीजन 2024-25 का जो डोमेस्टिक सीजन है क्रिकेट का पाकिस्तान में, उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। अलीम साहब जो हैं 3-टाइम विनर ऑफ प्रेस्टीजियस डेविड शेपर्ड ट्रॉफी फॉर आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर है, 2009 से लेकर 2011 तक इन्होंने जीती। ही प्लेड 17 फर्स्ट क्लास मैचेस, 18 लिस्ट ए मैचेस बिटवीन 1986 टू 1998। ही बिकेम द फर्स्ट टॉप क्लास एम्पायर ड्यूरिंग 1998-99 कायदे आजम ट्रॉफी, उसके बाद 2003 से लेकर 2023 तक ये सर्व करते रहे एज आईसीसीज एलीट एम्पायर्स पैनल के अंदर। और इन्होंने अपनी बड़ी अच्छी रेप्यूटेशन बनाई फॉर हिज कॉम डिमिनियर एंड ग्रेट डिसीजन मेकिंग। इस वक्त भी पीसीबी की जो एलीट पैनल है उसके ऊपर ये हैं। ही इज वन ऑफ द 4 पाकिस्तानी एम्पायर्स जो कि आईसीसी के इंटरनेशनल पैनल पे हैं और इन्होंने ऑफिशिएट किए हैं रिकॉर्ड ब्रेकिंग 145 टेस्ट, 231 ODIs, 72 T20s, 5 वर्ल्ड T20s, 181 first class matches and 282 list A matches. और जनाब आज जो हो रहा था सेकेंड एलिमिनेटर ऑफ चैंपियंस वन डे कप बिटवीन मार्खोर एंड लायंस, ये बिल्कुल वॉश आउट हो गया ये सारे का सारा आज का मैच इस्लामाबाद फैसलाबाद में, क्योंकि बेतहाशा बारिशें हो रही थी और मार्खोर्स जो थे अभी तक लीड कर रहे थे टूर्नामेंट के अंदर और अभी तक इन्होंने सिर्फ एक ही डिफीट जो थी फेस की थी अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी लेड लायंस। और अब चूंकि बारिश हो गई तो अब मार्खोर्स जो हैं वो क्योंकि उन्होंने कोई भी मैचेस ज्यादा नहीं हारे थे, एक ही हारा था, तो उसके पॉइंट्स के बेसिस पे ये अब आगे आगे हैं और अब ये खेलेंगे फाइनल संडे के दिन सितंबर 29 को एट इकबाल स्टेडियम अगेंस्ट पैंथर्स जो कि ऑलरेडी फाइनल्स में आ चुके थे। लायंस जो थे वो चाहते थे कि अपना जो है वो विनिंग स्ट्रीक को कंटिन्यू रखें लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके क्योंकि आज का मैच जो है वो वॉश आउट हो गया। तो ये थी जनाब हमारी आज की गर्मा गर्म खबरें।
ये थी गर्मा गर्म खबरें
खबरें
खबरें तो बहुत सारे लोगों का मुंह जल गया होगा।
यस तो हम भी जल गए, हमारी सीट भी जल गई है,
काफी सीट भी जल गई। नहीं एंजॉय करें,
एंजॉय का मजा लें।
फ्राइडे थोड़ी खबरें एंटरटेनमेंट की ज्यादा रखा करें आप।
अच्छा,
मैं ऐसी मासूमाना मेरी एडवाइस है
हाँ।
ताकि लोगों को मनोरंजन मिले पूरे वीकेंड।
यानी कि अब यूएनजीए में जो आपके जो प्राइम मिनिस्टर ने 50,000 लोगों से मुलाकातें की हैं वो हम ना बताएं, तुम्हारा मनोरंजन करें हैं जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग लाइक शाहरुख खान जी। नहीं ऐसा नहीं
फिर
हो सकता।
किसी एक मूवी का थोड़ा सा वो कहते हैं ना रिव्यू दे दिया,
दीवारा का रिव्यू दे रहे हैं ना
आपको। अभी वो आज ट्रेलर भी रिलीज हुआ है, टीजर आपकी जो मूवी आ रही है क्या नाम है यार, देखो भूल गया नाम।
हाँ जिगरा का
नहीं नहीं यार वो भूल भूलैया थ्री
हाँ।
टीजर रिलीज हुआ है उसका
हाँ।
विद्या बालन जो है वो
बड़ी ड्रोनी लग रही
है
उसमें। यस डाइन बनी हुई
और वो भाभी नंबर टू है उसमें।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
इस तरह मतलब एक हैप्पी न्यूज दिया करें ना, मतलब
यानी डाइन की खबर जो है वो हैप्पी न्यूज है।
नहीं मूवी अच्छी है ना, मतलब जो वन और टू जिन्होंने देखी है भूल भूलैया तो वो अच्छी मूवी है, मुझे तो मतलब अच्छी लगी। मैंने वन भी देखी है टू भी देखी है और आज ट्रेलर रिलीज हुआ है इसका तो एक्साइटिंग।
लगाओ उसका गाना, तेरी अखियां भूल भुलैया।
गाना मैंने आपके लिए जो है वो एक और निकाल के रखा है, टॉप ऑफ द आवर का ब्रेक भी है क्योंकि आपको जिंदगी में स्वैग की जरूरत है।
अच्छा अच्छा।
और स्वैग भी जब से यूके ने, अभी मैं आज भी हम ये बात कर रहे थे माजिद भाई और हम रास्ते में, सुनने में ये आ रहा है कि अब आपको यूके का वीजा लेने के लिए एज एन कैनेडियन आपको एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी।
जी मैंने ये खबर सुनाई कि अगर आप सो नहीं रहे थे,
नहीं मैं नमाज पढ़ा,
अगर आप सो नहीं रहे थे तो मैंने ये,
आई थिंक ईस है उसकी कोई
जी, हर बंदा हर फॉरेनर
कैनेडियन
हर फॉरेनर
हम तो कैनेडियन की बात करेंगे ना,
हर जो अब फॉरेन कंट्री से बंदा यूके जाना,
पैसों की कमी हो गई है,
पैसों की कमी हो गई है ना, सुनाई तो थी खबर 22 बिलियन
भाई एक आदमी
पता ही नहीं चल रहा किधर है,
गायब हो गए,
गायब हो गया
उसमें से एक मिलियन निकाल लिया
पाउंड्स, वो भी पाउंड्स 22 बिलियन पाउंड्स
का कैनेडियन 1 मिलियन कैनेडियन डॉलर निकाल लिया।
हाँ तो इसलिए अब वो कह रहे हैं जो भी कोई अब आएगा यहाँ पे
पैसे
वो पैसे दे के
मतलब उनका नुकसान सारे हम पूरा करेंगे,
हम पूरा करेंगे।
बड़ा जुल्म है, ये भी एक जुल्म है।
हाँ जी
हम ऐसे पाकिस्तान में रोते रहते हैं गवर्नमेंट ने ये कर दिया गवर्नमेंट ने वो कर दिया।
2025 से वो बिल्कुल इसको लागू कर रहे हैं, तो अभी अगर तो 2-3 महीने में जो अपने मजे करते हैं
जनवरी से पहले
फिर क्या फटोफट
बगैर फीस के
यस।
या अल्लाह क्या बनेगा इस दुनिया का। ये तेरे मासूम लोग
हाँ,
ये नादान लोग
हाँ, हाँ,
इनको थोड़ी अकल दे।
आहो आहो आहो
ठीक हो गया
हाँ।
चले जनाब आपकी जिंदगी में स्वैग लेके आते हैं हाँ, और स्वैग
तो तुमने हमारा स्वैग से स्वागत क्यों नहीं किया भाई, अगर हमारी जिंदगी में स्वैग लाना था तो पहले स्वागत तो स्वैग से करना था।
उसके लिए तकरीबन 1 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए,
चार फॉलोअर्स, यानी कि वीकेंड में भी बिस्तियां हैं आमिर।
मैं बेचती किसी की भी नहीं, अल्लाह माफ करे मैं किसी की बेचती
नहीं, तुमने की है, तुमने मुझे फिर से याद कराया मेरे 4 फॉलोअर्स हैं।
अच्छा भूल जाए काट दे, कट एडिट कर दिया किसी ने नहीं सुना, किसी ने
नहीं सुना। ओके ऑलराइट,
तो मैं आपको स्वैग लेकर जाता हूँ यूके।
ठीक है
ठीक है ना, तो ये गाना आपको पसंद आएगा और इंजॉय भी कीजिए। इसके बाद टॉप ऑफ दी आवर का ब्रेक ले लेंगे फिर वापस आते हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं 416-6201778 हमारा नंबर है। यूके जैसे भी बात कर रही थी और स्वैग इनको जरूरत है तो एंजॉय कीजिए, वापस आते हैं।
कमोन रुकती ना नचती जाए सारा लाहौर तेरा फैन हो गया मेकअप दी किट मुका के चश्मा नैना ते लाके कर दी तू फैशन जेड़ा फैन हो गया मैं गाय लेंगा तेरा कुमदा फ्लोर दे मेरी पतंग उड़ी जावे तेरी डोर से करदा इशारे सानू कोका तेरा काला नी देसी ये बिलो तेरा यार पर तेरा बैग यूके वाला नी देसी ये बिलो तेरा यार पर तेरा बैग यूके वाला नी मंगदा मैं बस तेरा प्यार खोल दिल वाला कहानी मंगदा मैं बस तेरा प्यार खोल दिल वाला कहानी कुड़िया ने हजार तेरी वर्गी कोई लभदी नहीं मिलदी जावे तां की करना नाल मेरे कोई सजदी नहीं कुड़िया ने हजार तेरे वर्गी कोई लभदी नहीं मिल भी जावे तागी करना नाल मेरे कोई सकती नहीं नखरे सारे तेरे पूरे मैं कर जावांगा करके तारीफ तेरी नजरा उतारांगा अच्छा ने ब्राउन तो मुख माशाला नी ये बिलो तेरा यार पर तेरा बैग यूके वाला नी।